लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे सृष्टि के संसाधनों के प्रति सम्मान और सुरक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को लूटा नहीं जाए बल्कि न्यायपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से साझा किया जाए। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर
और सिस्टर अनुग्रह मिंज।
पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। सर्वोच्च प्रभु की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसी ने अपूर्व कार्य किए हैं। उसने अपनी प्रज्ञा से आकाश बनाया है। उसने पृथ्वी पर समुद्र स्थापित किया। उसने महान नक्षत्रों की रचना की है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने दिन का नियंत्रण करने के लिए सूर्य की सृष्टि की, रात्रि का नियंत्रण करने के लिए चंद्रमा और तारों की। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 136वें भजन के प्रथम 9 पदों में निहित ईश्वर के कार्यों का बखान तथा ईश भक्तों और उनके प्रेम पात्रों से सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति का आह्वान करने संबंधी शब्द। 26 पदों वाले इस भजन का प्रत्येक पद ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और ईश्वर की स्तुति का आह्वान करता है। 4 से लेकर 9 तक के पद फिर सृष्टि की महिमा गाते हैं, जैसा कि हम उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय में पढ़ते हैं। लिखा है, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन और अंधकार का नाम रात रखा। आगे के पदों में भजनकार श्रद्धालुओं से निवेदन करता है कि वे प्रभु ईश्वर को मुक्ति के वरदान के लिए धन्यवाद दें। मिस्रियों की दास्ता से उन्हें मिली मुक्ति का स्मरण करें। 136वें भजन के 10 से लेकर 16 तक के पद इस प्रकार हैं। उसने मिस्रियों के पहलौठों को मारा। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह उनके बीच में से इसराइलियों को निकाल लाया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हाथ बढ़ाकर अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। उसने लाल सागर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। वह बीच में से इसराइलियों को ले चला। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने फिराउन और उसकी सेना को समुद्र में बहा दिया। वह अपनी प्रजा को मरुभूमि से होकर ले चला। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है।
धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान। परम विशाल सभा में तुझको धन्यवाद दूंगा भगवान, जन समूह के बीच करूंगा प्रभुवर मैं तेरा गुणगान, प्रभुवर मैं तेरा गुणगान।
श्रोताओं, नबी मूसा के नेतृत्व में प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा इसराइल को मिस्र की गुलामी से मुक्ति दिलाकर प्रतिज्ञात देश में ले आए थे तथा 40 वर्षों तक उजाड़ प्रदेशों में उनकी कठिन यात्रा के हर पग पर उन्होंने इसराइलियों की मदद की थी, उनकी रक्षा की थी। इसीलिए अब मंदिर का उपदेशक भक्त समुदाय से ईश्वर की स्तुति और उनके महान कार्यों के बखान का आह्वान कर रहा था। वह लोगों के समक्ष इस तथ्य को रेखांकित कर रहा था कि प्रभु ईश्वर ने अपने लोगों को बचाया, उन्होंने उन्हें खिलाया पिलाया और सुरक्षित प्रतिज्ञात देश तक पहुंचाया, और यह सब उन्होंने लोगों के प्रति अपने असीम प्रेम के खातिर किया। उसका अनुरोध है कि लोग प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु भले हैं, उनका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। आगे 136वें भजन के 17 से लेकर 22 तक के पदों में दुष्ट राजा नबूखदनेस्सर के युग में ईश प्रजा द्वारा सहे गए निष्कासन और कष्ट कर समय की याद दिलाकर कहता है, उसने शक्तिशाली राजाओं को हराया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने महान राजाओं को मारा, अमोरियों के राजा सीहोन को, बाशान के राजा ओक को भी, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने उनकी भूमि को विरासत के रूप में दे दिया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसे विरासत के रूप में अपनी प्रजा इसराइल को दे दिया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। श्रोताओं, इन सभी राजाओं ने ईश प्रजा को सताया और उत्पीड़ित किया था तथा इनके चंगुल से वे सिर्फ ईश्वर की दया, उनकी कृपा और प्रेम के कारण मुक्त हो सके थे। इसीलिए अब उपदेशक उनसे आग्रह करता है कि वे प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। फिर 136वें भजन के अंतिम 3 पदों में भजनकार कहता है, उसने हमारी विपत्ति में हमें याद किया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हमें हमारे शत्रुओं के फंदों से छुड़ाया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। स्वर्ग के ईश्वर की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वस्तुतः 136वें भजन में ईश प्रजा इसराइल को ईश्वर के समस्त महान कार्यों का स्मरण दिलाया गया है। प्रश्न उठ सकता है कि प्रभु ईश्वर ने इसराइल को ही क्यों अपनी प्रजा चुना। उन्होंने इसलिए इसराइल को चुना क्योंकि इसराइल द्वारा ही प्रभु येसु ख्रीस्त में ईश्वर की महिमा प्रकट होने वाली थी। ईजाया के ग्रंथ के 49वें अध्याय के 2 और 3 पदों में हम पढ़ते हैं, उसने मेरी वाणी को तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इसके अतिरिक्त श्रोताओ, 136वें भजन के अंतिम पद केवल इसराइली जाति को ही नहीं अपितु युग युगांतर तक हम सब मनुष्यों को संबोधित हैं। भजनकार यह स्पष्ट करता है कि प्रभु ईश्वर केवल इसराइल की ही नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति की सुधि लेते हैं। कहता है, वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। स्वर्ग के ईश्वर की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है।
धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान। मेरी दशा देख अन्यायी, शत्रु न हंसने पाए। मेरी दशा देख अन्यायी, शत्रु न हंसने पाए। और कटाक्ष अकारण कर, वे घृणा न करने पाए। क्योंकि नहीं लगती है उनको भली शांति चर्चाएं। शांत स्वदेशवासियों के प्रति वे करते छल छंद विधान। धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान। सचेत हो मेरे प्रभु, मेरी रक्षा को तैयार। उठ सचेत हो मेरे प्रभु, मेरी रक्षा को तैयार। मेरे स्वामी मेरे ईश्वर, मेरे हित का करो विचार। मेरे स्वामी मेरे
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार 24 सितंबर को वाटिकन में परम धर्म पीठ के लिए डोमिनिकन गणराज्य के नए राजदूत श्रीमती यूनिनिस वेस्क्वेज अकोस्ता से मुलाकात की और उनका प्रत्यय पत्र स्वीकार किया। श्रीमती यूनिसिस का जन्म 31 मई 1960 को नागुआ डोमिनिकन रिपब्लिक में हुआ था। उन्होंने 1983 में नेशनल यूनिवर्सिटी पी हेनरिकेज में लॉ में स्नातक किया और 2002 में ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी में सिविल लॉ में विशेषज्ञता हासिल की। वे न्यायविद विशेषज्ञ और कानून के प्रोफेसर हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं और डोमिनिकन काउंटी में अनेक पद संभाले हैं। और पूरे विश्व के कैथोलिक 1 सितंबर से 4 अक्टूबर तक सृष्टि का मौसम मना रहे हैं। यह हमारे आम घर की रक्षा की एक अभिव्यक्ति है। संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट कर सभी लोगों को मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्रेरित किया। ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा, मनुष्य के परिवेश और पर्यावरण का विनाश अत्यंत चिंताजनक है। केवल इसलिए नहीं कि ईश्वर ने हमें दुनिया को सौंपा है, बल्कि इसलिए कि मानव जीवन स्वयं एक उपहार है जिसका बचाव किया जाना चाहिए। # सृष्टि का मौसम। और समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने हेतु गठित परम धर्म पीठ से संलग्न एक नए परिषद प्रवासी और शरणार्थी विभाग के उप सचिव कार्डिनल माइकल चर्नी ने कलीसिया के नेताओं से आंतरिक विस्थापितों के प्रेरितिक चुनौती के जवाब में सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हमारी निकटता सुनने को बढ़ावा दे सकती है जो आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों IDP के लिए अधिक जरूरत है। यह आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की भागीदारी को भी प्रभावित कर सकता है जब वे अपनी भाषाओं में कही गई बातों को सुनते और समझते हैं। कार्डिनल चर्नी ने बुधवार को प्रवासियों और शरणार्थियों के अनुभाग के सहयोग से जेस्विट रेफ्यूजी सर्विस JRS और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सुपीरियर्स जनरल UISG द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए विश्व दिवस एक ऐसा दिन है जो इस कदम पर कमजोर लोगों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए समर्पित है, क्योंकि वे कई चुनौतियों का सामना करते हैं और उन अवसरों को उजागर करने के लिए जो प्रवासन प्रदान करता है।
विस्थापित लोग हमें मानवता के छिपे हुए हिस्सों की खोज करने और इस दुनिया की जटिलताओं के बारे में हमारी समझ को गहरा करने का अवसर प्रदान करते हैं। उनके माध्यम से हम प्रभु से मिलने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, भले ही हमारी आँखों को उसे पहचानना मुश्किल हो। परंपरागत रूप से वार्षिक दिवस सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इस साल का उत्सव 27 सितंबर को पड़ेगा। 106वें विश्व दिवस की थीम है यीशु मसीह की तरह भागने के लिए मजबूर। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों का स्वागत, संरक्षण, संवर्धन और एकीकरण। इस साल की शुरुआत में 13 मई को संत पापा फ्रांसिस ने प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए विश्व दिवस पर एक संदेश जारी किया है। कार्डिनल चर्नी ने बताया कि चल रही महामारी की चुनौतियों के कारण संत पापा ने न केवल आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए अपने संदेश के दायरे को व्यापक किया, बल्कि सभी जो कोविड-19 के कारण अनिश्चितता, परित्याग, हाशिए पर और अस्वीकृति की स्थितियों का सामना कर रहे हैं। कार्डिनल चर्नी ने कहा कि प्रवासियों और शरणार्थियों के 2008 विश्व दिवस के लिए संत पापा के संदेश में उन्होंने सभी से चार क्रियाओं के बारे में जवाब देने का आह्वान किया। आपका स्वागत है, रक्षा करें, प्रचार करें और एकीकृत करें। कार्डिनल ने बताया कि इस वर्ष के संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने उन चार क्रियाओं को 6 क्रियाओं में बढ़ाया है जो व्यवहारिक क्रियाओं से जुड़े हैं। उनमें से प्रत्येक को चुनौतीपूर्ण तरीकों से एक साथ जोड़ा गया है। वे हैं, आपको समझने के लिए जानना होगा, सेवा करने के लिए पास होना आवश्यक है, सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें सुनने की जरूरत है, बढ़ने के लिए साझा करना आवश्यक है और निर्माण के लिए सहयोग करना आवश्यक है। कार्डिनल ने कहा कि प्रत्येक जोड़ी में संत पापा फ्रांसिस ने महत्वपूर्ण दृष्टिकोण जैसे सामंजस्य और विकास को प्राप्त करने के लिए बुनियादी दृष्टिकोण या कौशल प्रस्तुत किया है। वे चाहते हैं कि हम नए स्थान बनाने का साहस करें, नए तरह से आतिथ्य, बंधुत्व और एकजुटता को अनुमति दें। कार्डिनल चर्नी ने यह भी बताया कि आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति जिस दृढ़ संकल्प, कौशल और क्षमता के साथ अपने जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं, समाजों को भी बढ़ने में अपना योगदान देते हैं, जो उनके नए घर बन जाते हैं। यह देखते हुए कि IDP परिवर्तन का एक सकारात्मक बल हो सकता है, उन्होंने कहा, स्थानीय समुदायों के साथ उनकी बातचीत का समर्थन करने से सामाजिक सामंजस्य, शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
उधर कारितास यूरोप ने यूरोपीय संघ मुख्यालय ब्रसेल्स में शरण और प्रवासन पर यूरोपीय संघ के समझौते में निराशा व्यक्त की है। यूरोप में कैथोलिक कलीसिया के मानवीय नेट ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि यह समझौता यूरोपीय संघ की दिशा में अधिक संतुलित और मानवीय प्रवासन नीतियों को स्थानांतरित करने की उम्मीदों से कम है। लंबे समय से प्रतीक्षित प्रवासन समझौते की आवश्यकता नाटकीय रूप से उजागर हुई जब लेस्बोस के ग्रीक द्वीप पर मोरिया शिविर में रखे गए 12,000 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को असुरक्षित छोड़ दिया गया। संगठन ने कहा कि उसे उम्मीद थी कि मोरिया की तबाही यूरोप के दरवाजे पर प्रवासियों को रखने की नीतियों को बदल देगी, लेकिन यूरोपीय संघ ने अपने कार्यक्रम को मौलिक रूप से बदलने या ऐसी नीतियों का प्रस्ताव नहीं दिया है जो निश्चित रूप से मर्यादाहीन प्रवासी शिविर में परिवर्तन लाएंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।